आज हम प्रभुपाद की लीला मृत पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त किए हैं। हमारे प्रभु जी ने कहा आज आप पढ़िए, बहुत कम दिन हमको मिलते हैं प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ने का, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो आज मुझे अवसर दिया प्रभु जी ने। 47 प्रकरण में अमेरिका में प्रचार भाग नंबर 2 पर चर्चा होगी, लॉस एंजेलिस में July 22, 1975। 3 सप्ताह से अधिक हो गया था जब प्रभुपाद ने बीबीटी को 2 महीने में 17 पुस्तकें छापने का आदेश दिया था। अब रामेश्वर और राम बल्लभ ने रिपोर्ट दी कि सभी विभागों में 2400 घंटे काम हो रहा था और लक्ष्य प्राप्ति के लिए भक्त दृढ़ संकल्प थे। अधिकांश प्रेस कर्मचारी 4:30 बजे सवेरे मंगल आरती में उपस्थित होते थे, निर्धारित संख्या में माला जपते थे और देर रात तक काम में लगे रहते थे। कभी कभी वे केवल एक बार खाना खाते थे। इस कारण के अन्य विभागों में अतिरिक्त संपादक, चित्रकार, फोटोग्राफर, अनुक्रमणिक बनाने वाले, टाइम करने वाले, प्रूफ पढ़ने वाले और लेआउट करने वाले लोग बुला लिए गए थे। श्रील प्रभुपाद की इच्छा पूरी करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी सहयोग दे रहा था। ऐसा लगता था मानो इस कार्य के अतिरिक्त उनके लिए किसी अन्य चीज का अस्तित्व तो नहीं रह गया था। देश के सबसे बड़े मुद्रक किंग्सपोर्ट प्रेस ने छपाई का काम अपने हाथ में लिया था। वह इस बात के लिए सहमत हो गया था कि वह अन्य सभी कार्यों को रोक दे ताकि उसके सभी प्रेस और जिल्दसाजी विभाग 2400 घंटे इस काम में लगे रहें। जब तक कि कागज देने की राजी हो गई थी ताकि निर्धारित समय में काम पूरा कर सके। बीबीटी का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर भारत पहुंचकर चैतन्य लीला के स्थानों का, विशेषकर बंगाल और उड़ीसा में फोटो खींचने में व्यस्त हो गया था। श्रील प्रभुपाद कलाकारों और बंगाली संपादकों को खुले तौर पर समय देकर उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उनके शिष्य दिन में कई बार संस्कृत और बंगाली शब्दों के सही प्रयोग के विषय में पूछने और उनके पास आते थे। यह केवल भाषा की विद्वता की बात नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक शब्द का अनुवाद पूर्व आचार्यों की व्याख्या और स्वयं प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत की अनुभूति के अनुरूप होना था। प्रभुपाद ने शिष्य संपादकों को आगाह कर दिया था कि वे मनमाना परिवर्तन न करें, वरन पूछ लें। कलाकारों के प्रश्न आमतौर से यह होते कि शिल प्रभुपाद की दिव्य दृष्टि के अनुसार चित्र में चीजें किस प्रकार दिखाई जानी चाहिए। चित्रों का सब तरह से ठीक बनाने की अपनी इच्छा के कारण ने प्रभुपाद से असंख्य प्रश्न पूछने का लाभ होता था। प्रभुपाद ने कहा कि उनके शिष्यों के दिव्य चित्र आध्यात्मिक जगत के झरोखे थे। कलाकार नहीं चाहते थे कि उनकी कल्पना से दृश्य अस्पष्ट हो जाए। एक दिन रामेश्वर श्रील प्रभुपाद के कमरे में एक कलाकार के चित्र लेकर आया जिसकी क्षमता पर अधिक अनुभवी कलाकारों ने प्रश्न चिन्ह लगाया था। संबंधित कलाकार गौरी देवी दासी थी जिसमें कलात्मक प्रतिभा थी और जो पुस्तक वितरण का काम करती थी, किंतु जिसे पुस्तक छपाई की आपात सेवा में लगाया गया था उसके द्वारा बनाया गया गुंडीचा मंदिर का चित्र रामेश्वर ने श्रील प्रभुपाद को दिखाया। प्रभुपाद का निर्णय, आहा, यह तो बहुत अच्छा है। एक वरिष्ठ कलाकार भी वहां उपस्थित था और उसने कई तकनीकी भूलों की ओर इंगित किया, किंतु प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह अंधा चाचा कोई चाचा न होने से अच्छा है। उन्होंने कहा, इसके अतिरिक्त पेंटिंग में ऐसी भक्ति भावना का चित्रण है जिसे पुस्तक के पाठक सराहेंगे। लॉस एंजेलिस में श्री प्रभुपाद की उपस्थिति के कारण पुस्तक की छपाई के काम की भाग दौड़ में बड़ी तेजी आ गई। प्रभुपाद के प्रातकालीन भ्रमण में और उनकी कक्षा में शामिल हुए बिना ही या शाम को बगीचे में बैठकर पठन कार्य किए बिना ही प्रेस कर्मचारियों को दिव्य महानुभूति होती थी। प्रभुपाद जिस चीज को सबसे अधिक चाहते थे कर्मचारी उसी पर दिन रात लगे हुए थे और वे मन में तर्क करते थे कि प्रभुपाद से मिलने का समय निकालना स्वार्थपरता होगी, अपनी सारी शक्ति कृष्ण की सेवा में लगा देना ही उनके लिए अति आनंद दिए था। प्रेस दिन रात व्यस्त था। भक्तों को सवेरे 2 या 3 बजे अपने मेजों टाइपराइटरों या चित्र फलाकों पर मुंह के बल झुके हुए पाना आम दृश्य था। प्रूफ रीडरों के हाथों में पांडुलिपियां इतनी तेजी से आती जाती थी कि उन्हें पता ही न लगता था कि कोई कलाकार अपने अधूरे चित्र के सामने पढ़कर सो जाता और जागकर देखता कि वह चित्र किसी दूसरे कलाकार के चित्र पलक पर पूरा किया जा रहा है। रामेश्वर जिसे सोने का बहुत कम समय मिला पा रहा था सभी लोगों में समन्वय स्थापित करने में लगा था। जिसने भारत स्थित फोटोग्राफर मुद्रक कागज कंपनी सभी शामिल थे। कभी कभी उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर सीधे राधा बल्लभ के साथ काम करता हो। राधा बल्लभ ने प्रतिदिन का लक्ष्य तय कर लिया और किसी भी कीमत पर वह उसे पूरा करता था। प्रेस कर्मचारियों के लिए मानो वह सर्वत्र उपस्थित था। वह उन्हें प्रोत्साहित करता रहता था, उनके लिए वस्तुओं की आपूर्ति करता, उनकी आवश्यकताओं पूरी करता, उनसे प्रार्थना करता और अपना निर्धारित कोटा पूरा करने के लिए उन पर जोर डालता। किंतु एक रात अपने कार्यक्रम से हटकर वह प्रभुपाद के कमरे में घुसा जहां वे भक्तों के एक दल के साथ अनौपचारिक बैठक कर रहे थे। आंखें बंद किए हुए और धीरे धीरे सिर हिलाते हुए प्रभुपाद अपने ही गाए हुए भजनों को टेप सुन रहे थे। आंखें खोलकर उन्होंने राधा बल्लभ को औरों के मध्य बैठे देखा और कहा, मैं तुम्हें रोक रखा हूं। उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली। एक भक्त बोल उठा और कहा, नहीं नहीं प्रभुपाद, आप हमें परेशान न करें। किंतु एक दूसरा भक्त राधा बल्लभ की ओर मुड़ा और बोला, मैं समझता हूं कि प्रभुपाद तुमसे बात कर रहे थे। राधा बल्लभ ने अनुभव किया कि प्रभुपाद का आशय क्या था। वे उसे वापस जाकर काम करने के लिए कह रहे थे, मानो प्रभुपाद उसे सचमुच ये कह रहे हो, तुम यहां मुझे देखते हुए क्यों बैठे हो, वापस जाकर अपने काम पर लग जाओ। श्री प्रभुपाद अपने शिष्यों की कार्यनिष्ठा से प्रसन्न थे। उन्होंने 2 महीने से उनसे 17 पुस्तकों की सफाई पूरी करने कहा था और वे बजाय इसके उन्हें बताने की कोशिश करने की ये कार्य क्यों असंभव था, उनके आदेश को इतनी गंभीरता से ले रहे थे कि वे उनसे इनकार या उसमें परिवर्तन या संशोधन की भी बात नहीं सोच सकते। उनके आदेश के परिवर्तन के स्थान पर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया था। सामान्य कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर वे असामान्य प्रयास के क्षेत्र में पहुंच गए थे। परिणाम स्वरूप प्रभुपाद और वे दोनों बहुत संतोष का अनुभव कर रहे थे। जैसा कि प्रभुपाद ने कहा, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो भगवान चैतन्य और सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के संतोष के लिए संभव बन गई थी। श्री प्रभुपाद ने अपने संयुक्त राज्य की यात्रा की जारी रखने की निर्णय लिया। उन्हें लगुना बीच से सैड डियागो और वहां से डलस पहुंचना था। उन्हें डलस से न्यूयॉर्क और अर्लिंस और निकटस्थ मिसिसिपी में इस्कान का फार्म देखना था। फिर वहां से डिट्रॉयट, टोरंटो, वॉशिंगटन होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचना था। न्यूयॉर्क से यूरोप की यात्रा करते हुए अंततः भारत आना था। प्रभुपाद के दृष्टिकोण से कृष्ण भावनामृत के प्रसार में के लिए उनकी यात्रा आवश्यक थी। जैसा कि वर्कले पहुंचने पर उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा था, मैं साल में 2-3 बार विश्व भ्रमण करता हूं। मेरा धर्म है कि मैं देखूं कि जिन शिष्यों ने मुझे गुरु स्वीकार किया है वे पतन के गर्त में न गिरे, मेरी यही चिंता है। प्रभुपाद की चिंता अपने शिष्यों के लिए थी। किंतु वह चिंता सभी लोगों के लिए भी थी। मानव समाज की पतित और अज्ञानतापूर्ण दशा से, विशेषकर पाश्चात्य जगत की दशा से दुखी होकर वे अंग्रेजी भाषी जन समाज की सहायता करना चाहते थे। जैसा कि उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था, 2 वर्ष पूर्व कलकत्ता में उनकी मनोस्थिति यही थी जब वे बीमार से उठे थे और लंदन की रथयात्रा में सम्मिलित होने के लिए वायुयान से वहां पहुंचे थे। उनकी सबसे प्रबल इच्छा पश्चिम में प्रचार करने की थी, जहां लोग मायावादी दर्शन के गहरे प्रभाव में थे, ईश्वर के अस्तित्व को नकार रहे थे और इंद्रियों के भोग का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग आसानी से अज्ञान का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, किंतु यदि वे एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना देंगे तो उनका कार्य सफल हो जाएगा। प्रभुपाद की योजना अपनी महत्वपूर्ण भारतीय परियोजनाओं पर कुछ महीने गहन कार्य कर रही थी। उनके बाद वे पश्चिम को लौटकर अपनी यात्राओं और प्रचार में लग जाएंगे। जरूरत दोनों की थी, भारत में परियोजनाओं को विकसित करने की और पश्चिम में यात्रा करने की। जब वर्कल में योगी भजन और उनके साथियों ने आश्चर्य प्रकट किया था कि प्रभुपाद विश्व यात्रा करके अपने शिष्यों को बनाए रखने में कैसे सफल हो रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया था कि यह बहुत कठिन कार्य था और वे अपने जीबीसी सचिवों को आंदोलन का नेतृत्व करने की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। किंतु अभी तक ऐसा लगा था कि जब तक उनमें यात्रा करने की शक्ति है तब तक वे यात्रा करना जारी रखेंगे। लगुना बीच, जुलाई 25, 1975। लगुना बीच लॉस एंजलिस के दक्षिण में 2 घंटे की कार द्वारा यात्रा की दूरी पर स्थित था। बीच के निकट घर को बदलकर बनाया गया मंदिर आए हुए भक्तों की अतिथियों से भरा था। प्रभुपाद के गद्दीदार आसन पर बैठने के बाद मंदिर के कुछ नेता एक एक करके आगे आए और उनका पग प्रक्षालन किया। अपने भाषण में प्रभुपाद जी मादक द्रव्य सेवन के विरुद्ध बोले, क्या यहाँ कोई जो यह कह सके कि मैं नियंत्रक हूँ? क्या यहाँ कोई है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके? आप सोच सकते हैं कि आप नियंत्रक हैं, किंतु आप मादक द्रव्यों से नियंत्रित हैं। लगुना बीज नगर अवैध मादक द्रव्य केंद्र के रूप में कुख्यात था। प्रभुपाद यहाँ भावुक आध्यात्मिकता की बात कहकर किसी की खुशामद करने नहीं आए थे, वरन उनकी भ्रम को चीर फेंकने के लिए आए थे। गुरु महाराज का पद प्रक्षालन अच्छा था, लेकिन सच्चा भक्त बनने के लिए विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना जरूरी था। प्रत्येक व्यक्ति को चुनना था कि वह मादक द्रव्यों से नियंत्रित होगा या कृष्ण से। प्रभुपाद मंदिर के निकट एक पड़ोसी के घर में ठहरे थे। उनके मिलने वालों में सर्वप्रथम ऋषिदास था, जो अपनी दीक्षा का परित्याग कर चुका था और कृष्ण भावना मित्र से दूर हट गया था। सिर पर लंबे घुघराले बाल और दाढ़ी रख के ऋषिदास संयोग से उठकर उधर आ गया ताकि अपने भूतपूर्व आध्यात्मिक गुरु से थोड़ी देर के लिए मिल ले। प्रभुपाद जी ने उत्साहपूर्वक ऋषिदास का स्वागत किया, दोनों में मुस्कान का विनिमय हुआ, किंतु ऋषि का व्यवहार निर्लज या लगभग अवज्ञापूर्ण था और उसने पाश्चाताप का कोई चिन्ह नहीं प्रकट होने दिया। प्रभुपाद को इस लड़के की जिसे उन्होंने कुछ वर्ष पहले संन्यास की दीक्षा दी थी, यह दशा देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। पूर्व के वर्षों में जब प्रभुपाद का कोई प्रिय शिष्य उन्हें छोड़कर चला जाता था तो उन्हें रोना आ जाता था। उन दिनों किसी शिष्य का पतन बहुत विरल था, लगभग नहीं के बराबर था, किंतु कुछ सालों से प्रभुपाद को ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं देखनी पड़ी उनके जीबीसी नेताओं और सन्यासियों के बीच भी। 1967 ईस्वी में उनकी शिष्याओं में से एक पहली शिष्या कृष्ण देवी दासी अपने पति सुबल को छोड़कर एक अन्य लड़के के साथ भाग गई थी, तो प्रभुपाद ने सुबल को यह कहकर ढाणस दिया कि कृष्ण का भक्त बनना बहुत विरली बात होती है। श्रील प्रभुपाद ने कहा था, आश्चर्यजनक यह बात नहीं है कि कृष्ण देवी दासी छोड़कर चली गई है, वरन यह है कि हम कृष्ण भावना मित्र में अडिग बने रह सकते हैं। यद्य भक्त लोग कृष्ण भावना मित्र को विभिन्न कारणों से छोड़ते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद को यही दिखाई देता है कि वे माया द्वारा ठगे गए हैं। परिणाम लगभग हमेशा वही होता है, चाहे किसी ने नए धर्म के बहाने छोड़ा है, नए आर्थिक लाभों के लिए छोड़ा हो, या अन्य किसी कारण से छोड़ा हो। आमतौर से वह आत्म सत्कार के कड़े मार्ग को छोड़कर इंद्रियों की तृप्ति का जीवन अपना लेता था या लेती थी। ऋषि के बारे में निश्चित रूपेण यही सच था। जब प्रभुपाद ने पूछा कि वह अपने जीवन के साथ क्या कर रहा है, तो वह हंसा और बोला कि सैक्सोफोन बजा रहा हूं। अब यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह गई कि वह 16 फेरी माला जप कर रहा था या नहीं, अथवा चारों नियमों का पालन कर रहा था या नहीं, किंतु ऋषि प्रभुपाद को आश्वस्त करना चाहता था कि सब कुछ बहुत बढ़िया है। उसने कहा, मैं समझता हूं कि मैं अब अधिक स्वतंत्र हूं। प्रभुपाद ने चुनौती दी, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें स्वतंत्रता है? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ कुछ है, अध्ययन और कार्य करने से। प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हारी अवस्था क्या है? 29। प्रभुपाद ने आग्रहपूर्वक पूछा, क्या तुम इस बात की स्वतंत्रता है कि तुम्हारी अवस्था आगे न बढ़े? नहीं। सब तुम्हारी स्वतंत्रता कैसी है? ऋषि तनिक हंसा, मुझे चिंता नहीं है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये ठीक है, किंतु मैं शोध कर रहा हूं, मैं अब 78 वर्ष का हो गया हूं, मैं मरना नहीं चाहता। किंतु मरना तो होगा ही, तुम्हें भी वृद्ध तो होना ही है, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है। कृष्ण भावना मित्र दर्शन की कुछ बातों का स्मरण करके ऋषि ने प्रभुपाद के विरोध में तर्क देने का प्रयत्न किया। उसने कहा कि यद्यपि वृद्ध होना उसकी मजबूरी है, किंतु आत्मा के कायांतर के कारण मृत्यु के पश्चात वो स्वतंत्र हो जाएगा, और जो भी हो अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी तो हैं। प्रभुपाद अपने मूल तर्क पर अड़े रहे और बोले, मृत्यु अनिवार्य है, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता, हर कोई यौवन चाहता है। एक वृद्ध मनुष्य भी बीच पर स्वास्थ्य की खोज में जाता है, मैं यौवन चाहता हूं, किंतु मैं इसे पा नहीं सकता, तो स्वतंत्रता कहां है? प्रभुपाद ऋषि और कमरे में बैठे अन्य भक्तों के लाभ के लिए विस्तार से बोलते रहे। उन्होंने कहा कि माया के वशीभूत व्यक्ति कहते हैं कि वे स्वतंत्र हैं। मादक द्रव्य का व्यसनीय या शराबी पीने वाला समझता है कि वह स्वतंत्र है, सड़क पर पड़े रहने के लिए तो भी उसके कार्य उसे भौतिक प्रकृति के कड़े कानूनों में जकड़ देते हैं। कानून तोड़ने वाला कहता है कि वह राज्य के कानून से स्वतंत्र है, लेकिन उसे जेल जाना पड़ता है, तो उसके ये कहने का क्या लाभ? वो कहां स्वतंत्र है? प्रभुपाद ने बताया, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता तुम्हें मिली है उसे मुझको समर्पित कर दो। झूठी स्वतंत्रता पर प्रभुपाद की टिप्पणियां तर्कपूर्ण थी। अपने पहुंचने के 2 घंटे के अंदर उन्होंने लगुना बीच के रहस्यवादियों का भंडारा पूर कर दिया। ऋषि मुस्कुराता रहा और तर्क देता रहा, किंतु प्रभुपाद के सामने वह एक निरा युवा था जिसके पास कोई सही उत्तर नहीं था। प्रभुपाद की रुचि वाद विवाद में नहीं थी, वे केवल अपने शिष्य की सहायता करना चाहते थे। दूसरी ओर ऋषि के पास जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी उसका उपयोग वह कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा में कर रहा था। उसका विश्वास अपनी युवावस्था, नासाखोरी और संगीत में था। दरवाजा खुला, एक शिष्य ने घोषणा की, श्रील प्रभुपाद ये कुछ प्रचार है जो हमारे धर्म और समाज के अंग हैं। प्रभुपाद ने नए अतिथियों का स्वागत किया और उन्हें अपने सामने के गद्दे पर बैठने को संकेत दिया। प्रभुपाद ने कहा, मैं इस लड़के से स्वतंत्रता के विषय में बात कर रहा था। मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं है, हम सदैव परावलंबी हैं। यह विषय में आपका क्या मत है? प्रचारियों में से एक ने कहा कि मैं सहमत हूं। उसके बाद प्रभुपाद वार्तालाप करते रहे। प्रचारियों के साथ उनका वार्तालाप एक घंटे से अधिक चला। वार्तालाप के अंत के निकट उपेंद्र को 3 वर्ष का लड़का सौम्य कमरे के पीछे से प्रभुपाद के पास पहुंच गया। प्रभुपाद ने उसे कुछ पैसे दिए जो उनकी डेस्क पर पड़े थे। लड़का पैसे लेकर अपनी माँ के पास दौड़ गया और उसने पैसे उसे दे दिए। प्रभुपाद ने याद करके बताया, हाँ, जब मैं छोटा था उस समय यदि मुझे पैसे मिल जाते तो मैं उन्हें माँ को दे देता था, लेकिन जब मुझे माँ पर गुस्सा आता था तो मैं अपने पैसे वापस मांग लेता था। कभी कभी मैं माँ के पर्स में से पैसे चुरा कर चार्ली चैपलिन के चलचित्र देखने जाता करता था। उन्होंने कहा कि उनका प्रिय दृश्य हार्ड टाइम्स फिल्म का वह दृश्य था जिसमें चार्ली चैपलिन एक चाकू और फोर्क के साथ एक बूट खाने को मेज पर बैठता था। सैन डियोगो, जुलाई 27, 1975। मम्बोआ पार्क में एक उत्सव में सम्मिलित होने के लिए श्री प्रभुपाद ने तड़के के अंधकार में सैन डियोगो के मार्ग में सैन डियोगो फ्रीवे को पार किया। रास्ते में सैन क्लीमेंट आया जहां भूतपूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ठहरे हुए थे। प्रभुपाद निक्सन के भांडाफोड़ और त्याग पत्र के संबंध में पढ़ते रहे थे और अपने व्याख्यानों में प्राय उनकी चर्चा करते थे। कभी कभी वे इसे उदाहरण के रूप में सुनाया करते थे कि किस तरह सबसे शक्तिशाली लोग भी चिंता और हानि के घेरे में आ जाते हैं, और कभी कभी स्पष्ट करने के लिए कि चारों ओर स्वाभाविक वर्णाश्रमों में लोगों को समुचित प्रशिक्षण देने की कितनी आवश्यकता है। एक भक्त ने बताया कि श्रीमान निक्सन बिना किसी सामाजिक प्रतिष्ठा के अपने देशवासियों की घृणा का पात्र बनकर वहां रह रहे थे। श्री प्रभुपाद ने कहा, तब तुम लोगों को वहां जाना चाहिए और उसे उपदेश देना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया और पश्चाताप कर रहा है, इसलिए परम सत्य के विषय में सुनने में उसकी रुचि हो सकती है। प्रभुपाद ने एक ऐसा ही उपागम महात्मा गांधी पर भी आजमाया था। वल्बोआ पार्क में भक्तों ने घास के मैदान में जो दुकानें रंगीन खेमे और मंच तैयार किए थे उनसे प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बृहद जन समूह को संबोधित करना आरंभ ही किया था कि भीड़ में से एक आदमी चिल्लाने लगा। प्रभुपाद ने पूछा कि वह क्या कह रहा था, तो एक भक्त ने बताया, श्री प्रभुपाद, यह आदमी कह रहा था कि वह प्रतिमास एक बार से अधिक स्त्री संभोग करना चाहता है। प्रभुपाद माइक्रोफोन में बोले, वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। एक तनावपूर्ण पल के बाद प्रभुपाद ने अपना व्याख्यान जारी रखा। तो जिस तरह यह आदमी यौन संबंध की बात कर रहा है, उसी तरह संपूर्ण भौतिक संसार इस यौन संबंध से विमोहित है। उसके चीख भरे प्रतिवाद को अपने भाषण का एक नया केंद्र बिंदु बनाते हुए श्री प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज के व्यक्तित्व का उद्घृत किया कि सभी भौतिक पासों का आरंभ यौन संभोग से होता है, जो दिव्य आनंद की तुलना में अत्यंत तुच्छ और घृणास्पद है। प्रभुपाद ने जोर देकर कहा, किंतु वास्तविक आनंद इंद्रिय तृप्ति है, वास्तविक आनंद इंद्रिय तीत है। हम स्थूल इंद्रियों से जो आनंद प्राप्त करते हैं वे अस्थाई है, किंतु अस्थाई आनंद दिव्य होता है। उन्होंने आगे कहा, यह आदमी कह रहा था कि वह प्रत्येक मास कम से कम एक बार यौन सुख चाहता है। हाँ, इस बात की अनुमति है मासिक धर्म के 5 दिन बाद पति पत्नी उपयुक्त संतान पाने के लिए यौन संबंध कर सकते हैं। प्रभुपाद ने वैदिक परिभाषिक शब्द गर्भाधान संस्कार का प्रयोग किया है, जिससे विवाह की सीमा में यौन संबंध को शुद्ध करने की प्रक्रिया का जिक्र होता है। भक्तों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यौन संबंधों की दृष्टि से बिल्कुल स्वतंत्र दक्षिण कैलिफोर्निया के जन समूह सामने प्रभुपाद दायित्वपूर्ण विहित और यौन संबंध का पक्ष समर्थन कर रहे थे। सामान्यतया ऐसे मामलों पर यदि कभी भी अपना विचार प्रकट करते भी थे तो वह गृहस्थों के लिए गए पत्रों का होता था, किंतु यदि अमेरिका के लोग यौन सुख पर तुले थे तो प्रभुपाद की ओर से इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता थी। वे केवल इस बात पर बल देते थे कि यौन सुख सीमित और दायित्वपूर्ण हो। स्वच्छंद यौन संबंध करने का प्रतिफल दुख है। प्रभुपाद ने कहा, यौन संबंध की मनाही नहीं है, किंतु यौन संबंध की जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य अनेक पापमय कार्यों में लिप्त हो जाता है। एक महीने में एक बार यौन संबंध किया जा सकता है, यह विहित है, क्योंकि स्त्री को महीने में एक बार रजोधर्म होता है। इसलिए यौन संबंध का उद्देश्य अच्छी संतान प्राप्त करना है, इसलिए कि तृप्ति नहीं। यदि यह विधान के अनुसार हो तो संसार नरक नहीं बनेगा, यदि यह अविहित होगा तो संसार नरक हो जाएगा। यौन संबंध की मनाही नहीं, लेकिन उसे विधान सम्मत रूप में होना चाहिए, जिससे जन संस्था अच्छी तरह अच्छी हो और मनुष्य सुख से रह सके। विशेषकर वर्तमान समय में यदि आप कृष्ण चेतना युक्त बच्चे पैदा करते हैं तो वह भगवान की बड़ी सेवा होगी, क्योंकि हम कृष्ण चेतना युक्त आबादी चाहते हैं, अन्यथा यह संसार नरक बनने जा रहा है। बड़े बड़े साम्राज्य हो गए हैं, जैसे रोमन, ग्रीक और बाद में मुगल, अंग्रेज साम्राज्य, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी जैसे लोग हुए हैं। ये सभी शक्तिशाली साम्राज्य और मनुष्य पैदा हुए और समाप्त हो गए, केवल उनके नाम शेष रह गए। मैं आपके देश में आया क्योंकि मैंने सुना था कि आपका देश बहुत अच्छा है। आकर मैंने देखा कि वास्तव में आपका देश बहुत अच्छा है। आपके नगर, आपकी इमारतें, आपके लोग भी, क्योंकि मेरे शिष्य अधिकांश में अमेरिकी हैं और वे कहे आंदोलन को बढ़ाने में बहुत सहायता कर रहे हैं। मैंने अमेरिका के जीवन का अध्ययन अच्छी तरह किया है। वे बहुत अच्छे दिल वाले हैं, उनमें केवल कृष्ण चेतना की कमी है। इस कमी के कारण आपकी सारी संपन्नता के बावजूद आप दिग्भ्रमित और हताश हो रहे हैं। मैं सुनता हूं कि 3 दिन में से एक व्यक्ति मनोरोग का मरीज है, क्योंकि आप दुखी क्यों हैं? आपको दुखी क्यों होना चाहिए? आपके पास सब कुछ है, पर्याप्त खाद्यान्न, जमीन, धन, वृद्धि, तो आप दुखी क्यों हैं? इसका कारण जानने की कोशिश आपको करनी चाहिए। कारण यह कि कृष्ण चेतना के बिना, भगवत चेतना के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। बाहर की भीड़ अब शांत और एकाग्र चित्त थी। प्रभुपाद लगभग 40 मिनट बोले। इस भावना में तो दर्शन के सभी पक्षों पर उन्होंने प्रकाश डाला और अमेरिकी पुरुषों और महिलाओं से प्रार्थना के साथ अपना भाषण समाप्त किया कि वे कृष्ण भावनामित आंदोलन में गंभीरतापूर्वक सहयोग करें और यह इस प्रकार सुखी बने। लोगों ने उनके भाषण पर तालियां बजाई और भक्तगण पूरे तीसरे पहर आगंतुकों के साथ कीर्तन करते रहे, नाचते रहे और सबको प्रसाद वितरण करते रहे। एक भारतीय आगंतुक प्रभुपाद को बता रहा था कि भारत को अणु हथियार क्यों बनाना चाहिए और सैनिक शक्ति क्यों बढ़ानी चाहिए, किंतु प्रभुपाद उससे असहमत थे। उन्होंने बताया कि इसका कारण विशुद्ध क्षत्रियों का अभाव था। अब साहसी लोग नहीं रह गए, इसलिए अब स्त्री देश की प्रभारी है। समाचार पत्रों में भी इस तरह के कई समाचार छप रहे थे कि मायोक्रेज नाम का यूएस व्यापारी जहाज जो डम्बोडिया की बाहर मिल की सीमा के अंदर जा रहा था, बिना किसी चेतावनी के पकड़ लिया गया था। राष्ट्रपति फोर्ड ने कड़े कदम उठाए थे और संयुक्त राज्य के नौसैनिक भेज दिए थे। जहाज को छुड़ाने में 15 नौसैनिक मारे गए थे और 50 घायल हो गए थे और संयुक्त राज्य ने कंबोडिया पर बम बरसा की थी। प्रभुपाद ने कहा कि यह उचित था कि संयुक्त राज्य अपने देश से बाहर गए नागरिक की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका को शक्तिशाली होना चाहिए, किंतु सबसे पहले लोगों को कृष्ण चेतना बनाना चाहिए। यदि सचमुच यह कृष्ण चेतना राष्ट्र बन जाए तो यह घोषणा कर सकता है कि यदि किसी ने हमारे एक भी नागरिक का बाल बांका किया तो युद्ध होगा। श्रील प्रभुपाद जोरदार शब्दों में बोलते रहे। उन्होंने श्रोताओं के सामने एक शक्तिशाली अमेरिका का दृश्य प्रस्तुत किया, जो कृष्ण भावनामृत में संसार का नेतृत्व करेगा। इससे लोगों में विशुद्ध देशभक्त की आशाओं का संचार हुआ, जैसा कि वैदिक संस्कृत के युग में था, जब भगवत चेतना नेताओं द्वारा संसार पर शासन होता है था। अगले दिन सवेरे हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करने के लिए पूर्व श्रील प्रभुपाद बम्बवा पार्क में टहले। पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनकर वे बोले, वे प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि वे फल खाते हैं और सवेरे ही सवेरे गा रहे हैं रामेश्वर। किंतु जब हम लोगों से कहते हैं कि अगले जन्म में वे पशु या पक्षी होंगे तो वे कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि वे जीव मनुष्य से अधिक सुखी है। प्रभुपाद, किंतु चूंकि तुम धूर्त हो इसलिए तुम यह नहीं जानते कि तुम अधिक सुखी हो सकते हो। घर वापस जा सकते हो, परमात्मा के पास वापस जा सकते हो, तुम ये नहीं जानते। भक्तगण प्रभुपाद की टिप्पणी सुनने के लिए उनके सामने सभी तरह के प्रकरण लाना चाहते थे। वार्तालाप के विषय में तेजी से बदलते रहते थे। भक्त कभी कभी सामयिक पतन के भयानक उदाहरण प्रभुपाद के सामने लाते थे, या कभी कभी अपना संदेश मिटाने के लिए वे स्वयं अनिश्वरवादी बन जाते थे, या कभी कभी वे प्रभुपाद का ध्यान सामान्य हलचलों की ओर आकृष्ट करते थे। विषय या प्रकरण कैसा भी होता, प्रभुपाद भक्तों को यह सिखाते कि उन्हें किस प्रकार दिव्य दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार वे उन्हें स्वयं अपनी विशुद्धता और मानवीयता का भी परिचय देते थे। जब एक भक्त ने बताया कि वाल्बोवा पहला व्यक्ति था जिसने प्रशांत महासागर को देखा, तो पहले तो प्रभुपाद प्रभावित होते हुए दिखाई दिए, किंतु एक मिनट बाद उन्होंने ताना मारा, अरे वहां पहले से और लोग भी थे, इसे ये लोग नहीं जानते। प्रशांत और अंध महासागर का वर्णन कवि कालिदास के कुमार संभव काव्य में आया है। उसमें प्रशांत अंध महासागर सभी का उल्लेख है। वे मूर्ख कुछ नहीं जानते, वे कहते हैं यहां आने वालों में से पहला मैं हूं, मानो उनके पहले कोई था ही नहीं। जरा देखो तो, प्रभुपाद ने पिछले दिन पार्क में हुए उत्सव पर भक्तों को बधाई दी और कहा कि ऐसे उत्सव उन्हें हर दिन करने चाहिए। वे हंसकर बोले, तुम इतने धनी हो, तुम कर सकते हो, लगातार उत्सव करो, उनसे कहो आओ प्रसाद लो कीर्तन करो। ठीक उसी तरह वह क्या है, मुझसे किसने कहा लगातार मालिश। तमाल कृष्ण गोस्वामी, हाँ यहाँ 2400 घंटे चलने वाले मालिश घर हैं। प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, 2400 घंटे? उसी तरह 2400 घंटे निःशुल्क प्रसाद बांटो, बुलाओ लोगों को, किंतु वे इसके लिए भूखे नहीं हैं। घास के मैदान की ओर बढ़ते हुए उन लोगों ने एक व्यक्ति को शेर से बल खड़ा देखा। प्रभुपाद ने पूछा, क्या यह हमारा आदमी है? भक्त हंसने लगा और बोले, नहीं, यह योग कर रहा है। रामेश्वर ने कहा, यह अमर होना चाहता है? प्रभुपाद बोले, नहीं, इससे लोग स्वस्थ रहते हैं। तमाल कृष्ण, इससे शरीर ठीक रहता है? प्रभुपाद ने कहा, यह शीर्षासन कहलाता है। सिर के बल खड़ा होना, शीर्षासन, पद्मासन, योगासन, आसन कई तरह के हैं। तमाल कृष्ण, हम उनका अभ्यास नहीं करते। प्रभुपाद ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ, हमारे पास सोने से पहले नहीं बचता। भक्त उनके व्यंग युक्ति पर हंसने लगते। प्रभुपाद ने आगे जारी रखा, नहीं तो यह बुरा नहीं है, यह बुरा नहीं है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है योगासन से। प्रभुपाद ने मुख से हठ योग की आश्चर्यजनक रूप में ऐसी प्रशंसा सुनकर एक भक्त ने अनिवार्य प्रश्न पूछ लिया, तो यदि हमारे पास समय हो तो क्या हम यह कर सकते हैं? किंतु तब तक उनका टहलना समाप्त हो गया था और वे अपनी कारों तक वापस पहुंचे थे। श्रील प्रभुपाद मंद मंद मुस्कुराने लगे, मानो ये जानते थे कि उन्हें एक विवादग्रस्त प्रश्न में फंसाया जा रहा है। वे बोले, हरे कृष्णा। कार में सवार होकर उन्होंने जोड़ा, जरूरत नहीं है। डलस में जुलाई 28, 1975 एक संवाददाता ने डलस के फोर्थ वर्ष हवाई अड्डे पर पूछा, स्वामी आप यहाँ क्यों आए हैं? श्री प्रभुपाद ने कहा, यह मेरा घर है। उत्तर में उनके शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए, मेरे इतने सारे लड़के लड़कियां हैं, पोते पोतियां हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। श्री प्रभुपाद ने श्रीमद भागवत के तात्पर्य में डलास गुरुकुल के विषय में लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन टेक्सास के डलास गुरुकुल के अपने विद्यालय में वैष्णव की एक नई पीढ़ी की प्रशिक्षणी प्रशिक्षित कर रहा था। वहां 100 से अधिक लड़के लड़कियां नामांकित थे और प्रभुपाद जब संयुक्त राज्य की यात्रा पर आते तो उन्हें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता था। संयुक्त राज्य के अन्य इस्कान के केंद्रों की भांति यहाँ प्रभुपाद जी प्रबंधात्मक कार्यों में अपने आप को पूरी तरह लिप्त नहीं होने देते थे, किंतु ये आते जरूर थे और शिक्षकों से मिलते थे जो अपने प्रश्नों के साथ हमेशा तैयार रहते थे। चूंकि पश्चिम में कृष्ण चेतना शिक्षा का पहले से कोई नमूना मौजूद नहीं था और चूंकि भक्तों की इच्छा गुरुकुल की ठीक उसी ढंग से विकसित करने की थी जैसा कि प्रभुपाद जी चाहते थे, इसलिए उन्हें लगता था कि पाठ्यक्रम, अध्यापन विधि, स्वास्थ्य, रक्षा, मनोरंजन आदि के बारे में प्रभुपाद से पूछते रहना चाहिए। 100 डिग्री तापमान वाले मौसम में स्कूल के बच्चे शर्ट नहीं पहने थे और प्रभुपाद अपने कमरे में बिजली का पंखा चलाते थे। प्रभुपाद जो ही अपने कमरे में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सभी बच्चे और वयस्क उनके कमरे में आ जाएं, और एक एक करके सभी उनके कमरे में दाखिल हो गए और सबने अपना एक एक हाथ आगे निकाला और प्रभुपाद ने उसमें एक एक बड़ा रसगुल्ला रख दिया। उस दिन संध्या समय प्रभुपाद मंदिर के पीछे मैदान में चारों ओर घूमने वाली एक कुर्सी में बैठे, भक्त मोर के पंखे से बने बड़े पंखे से उन्हें हवा करने लगे। उस समय टिड्डी समूह वृक्षों में जोर से भिनभिना रहे थे। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ फलते फूलते तुलसी के पौधों के बीच बैठे रहे और कृष्ण पुस्तकों का वाचन सुनते रहे। प्रभुपाद की ओर से यह भी एक पाठ था कि गुरुकुल का संचालन कैसे करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे वे शिक्षकों के कठिन प्रश्नों के उत्तर देते थे। गुरुकुल में प्रत्येक वस्तु कीर्तन और कृष्ण के संबंध में वार्ता सुनने पर आधारित होना चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी कृष्ण द्वारा अपनी प्रेमिका रुक्मिणी को बचाने का प्रसंग पड़ रहा था। श्रील प्रभुपाद एकाएक बीच में बोल पड़े कि जब ये दोनों कृष्ण के रथ में पलायन कर रहे थे और अन्य राजकुमार उन पर आक्रमण कर रहे थे, तब रुक्मिणी ने घोड़े की बागडोर अपने हाथ में ले ली और स्वयं रथ हाँका। कृष्ण ने अपना धनुष बाण संभाल लिया और अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। भक्त विस्मित थे, वे कृष्ण पुस्तक के गहन ध्येता थे, किंतु उन्हें कहीं भी इस विषय पर इस विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिला था। उनमें से किसी ने कभी रुक्मिणी की बागडोर लेने की बात नहीं सुनी थी, न उन्होंने उसके बारे में इस तरह कभी सोचा था, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें विश्वास दिलाया कि रुक्मिणी ने लड़ाई के बीच कृष्ण का रथ निर्भयता पूर्वक चलाया था। जब प्रभुपाद इस तरह बात कर रहे थे तो गुरुकुल के प्रधान शिक्षक दयानंद ने अधिक सुविधाजनक स्थिति में बैठने के लिए एक टांग फैला दी। प्रभुपाद उनकी ओर मुड़े और रूखे शब्दों में बोले, अपने पैर तुलसी के निकट न लाएं, वह शुद्ध भक्त हैं। जब ब्रह्मानंद ने कृष्ण पुस्तक से एक प्रार्थना पढ़ी जिसमें वर्णन था कि कृष्ण सभी भौतिक तत्वों के सृष्टा हैं, तो प्रभुपाद बोल उठे, यदि हम यह नहीं मानते कि कृष्ण ने आकाश बनाया जो उसे किसने बनाया, टेक्सास के आकाश का नीलापन अब गोधूली में बदल रहा है और अतिथियों तथा भक्तों ने अपने आकाश की ओर देखा और तदनंतर वे प्रभुपाद की ओर देखने लगे। श्री प्रभुपाद ने कहा, भागवत गीता के अनुसार कृष्ण ने आकाश बनाया, भूमि अनलो वायु खम, तो हमें इस तरह अध्ययन करना चाहिए, अहम सर्वस्य प्रभाव, आकाश सबसे बड़ा भौतिक पदार्थ है किंतु उसे कृष्ण ने बनाया है, कृष्ण का अध्ययन इस तरह करो, उनका अध्ययन केवल गोपियों के साथ मत करो, तब तो तुम उन्हें गलत समझोगे। तुम जितना ही अधिक कृष्ण का अध्ययन करोगे उनके उतने ही अधिक पक्के अनुयायी बनोगे। अनधिकृत व्यक्ति आकाश की सृष्टि करने वाले कृष्ण का चित्रण कभी नहीं करते, वे कृष्ण को सदैव गोपियों का साथ नृत्य करते देखना पसंद करते हैं और इस तरह वे अपने काम लोलुप कार्यकलापों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। लालस के दो समाचार पत्रों में प्रभुपाद के आगमन की खबरें छपी थी, दी डॉलर्स टाइम्स हेराल्ड ने सील प्रभुपाद का एक चित्र छापा था जिसमें वे गुलाब की मालाएं पहने हुए बैठे थे, उनका दाहिना हाथ उठा था, उनकी तर्जनी अंगुली बाहर निकली थी और वे उपदेश की मुद्रा में थे। शीर्षक था, खुले पैर स्वामी ने कृष्ण प्रशंसक भीड़ जुटाए। इस दावे के अतिरिक्त कि श्रील प्रभुपाद खुले पैर थे, वास्तव में जूते पहने थे और पालथी मारकर बैठते समय उन्हें उतार दिया था। लेख में दलाश के कृष्ण भक्तों को लेकर एक और विवाद का भी उल्लेख था। लेखे में दलाश फोर्ट वर्थ हवाई अड्डे के अधिकारियों के विरुद्ध इस्कान की एक निषेधाज्ञा का भी वर्णन था, जिन्होंने भक्तों को साहित्य वितरण करने और अनुदान लेने से मना कर दिया। लेख को सुनकर श्री प्रभुपाद ने टिप्पणी की थी, यह अच्छा साहित्य है, इसे प्रोत्साहित मिलना चाहिए, इसे पढ़कर लोगों में समझ आएगी और वे अपनी संवैधानिक स्थिति को समझ सकेंगे, नहीं तो लोग अपराध से तंग किए जाते रहेंगे और वे नहीं जान पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद को यह जानने में विशेष रुचि थी कि समाचार पत्र में भारतीय राजनीति पर पूछे गए प्रश्न का उनका उत्तर किस रूप में छपा था। स्वामी ने उत्तर दिया कि श्रीमती गांधी की रुचि किसी प्रकार के आध्यात्मिक बोध की ओर है और यदि उन्होंने इसे पूरी तरह विकसित कर लिया तो स्थिति सुधर जाएगी, जनतंत्र का कोई लाभ नहीं। यदि उनके नेताओं के पास आध्यात्मिक मूल्य नहीं है, महात्मा गांधी व्यवहार में एक अधिनायक थे किंतु ऊंचे एक नैतिक चरित्र के व्यक्ति थे, इसलिए जनता ने उन्हें स्वीकार किया था। अधिनायक बाद अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि अधिनायक का आध्यात्मिक विकास हुआ हो। श्रील प्रभुपाद से इंदिरा गांधी के विषय में बार बार पूछा जा रहा था। संयुक्त राज्य की सरकार उनके हाल में लगाए गए आपात प्रशासन की आलोचना थी और विशेष रूप से शिकागो में स्त्रियों के विषय में की गई प्रभुपाद की टिप्पणियों का अर्थ संवाददाताओं ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आलोचना के रूप में लगाया था। शिकागो और लस दोनों स्थानों में प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया था कि राजनीति से उनका कोई विशेष संबंध नहीं था। यद्यपि उन्होंने कहा था कि कृष्ण के बिना राजनीति व्यर्थ है, प्रभुपाद भारत सरकार से अच्छा संबंध बनाए रखने के उत्सुक थे, इसलिए भारतीय नेताओं के विरुद्ध वे सार्वजनिक रूप में बोलना नहीं चाहते थे। उन्होंने प्रायः अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि वे प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे और उन्हें आश्वस्त करना चाहते थे कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन भारतीय जनता और सारे विश्व के लिए अच्छा कार्य कर रहा था और वे उनसे प्रार्थना करना चाहते थे कि प्रधानमंत्री आंदोलन की सहायता करें। भारत में प्रवेश पत्र प्राप्त करना भक्तों के लिए सदैव एक समस्या थी। उन्हें बार बार देश और उसकी सेवा को छोड़कर जाना पड़ता था। प्रवेश पत्र का नवीकरण कराकर फिर से आना बहुत महंगा पड़ता था। अब कुछ भक्तों को, विशेषकर मायापुर में रहे भक्तों को, देश छोड़ने को कहा गया जा रहा था, क्योंकि श्रीमती गांधी के राजनीतिक कार्यों के कारण अमेरिका का रुख उनके विरुद्ध हो गया था। हाल में प्रभुपाद को दिल्ली से भक्तों का एक एक पत्र मिला था कि वे एक बैठक में आयोजन का प्रयत्न कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद को डैलस टाइम्स हेराल्ड में इंदिरा गांधी पर प्रकाशित अनुकूलन टिप्पणी पसंद आई थी और उन्होंने कहा था कि इसे सुरक्षित रखा जाए। जिस दिन श्रील प्रभुपाद को न्यू आयरलैंड के लिए प्रस्थान करना था, उस दिन सवेरे व्हाइट रॉक लेक के निकट घूमते हुए वे भक्तों के मुख्य दल से पीछे रह गए और उन्होंने अपने सेवक से कहा, मैं ठीक नहीं अनुभव कर रहा हूं। कुछ सन्यासी सो आसपास थे, चिंता कुल होकर उनके बिल्कुल निकट चले आए। प्रभुपाद ने यह भी कहा, कल भी ऐसा ही हुआ था, क्या यह गर्मी के कारण है? श्रील प्रभुपाद, मैं नहीं जानता, किंतु अब मुझे सिर दर्द हो रहा है और मेरी सांस कुछ फूल रही है, क्या आज सवेरे की यात्रा रद्द कर दी जाए? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि गर्मी के कारण हो सकता है। उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो गई थी। जब उनसे पूछा गया कि खाना उन्हें पसंद था, तो उन्होंने कहा कि बहुत पसंद तो नहीं है, खाना बनाने वालों का हमेशा बदलने रहना ठीक नहीं होता है। ब्रह्मानंद स्वामी ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य के लिए एक अन्य कठिनाई लगातार हवाई यात्रा भी हो सकती है, किंतु जब ब्रह्मानंद ने न्यू आयरलैंड की यात्रा रद्द करने की बात फिर कही, तो श्रील प्रभुपाद बोले, नहीं नहीं, और वे आगे बढ़ते गए। समय तो नहीं हुआ तो यहां बंद करें, क्या आप लोग सुनना चाहते? बंद करें और थोड़ा करें। जुलाई 31 को न्यू आयरलैंड की यात्रा के दौरान मौसम तूफानी था। उपेंद्र के साथ प्रथम श्रेणी में बैठे हुए श्रील प्रभुपाद जब खिड़की से बाहर देख रहे थे तो आवाज आई, अपनी सीट की पट्टी बांध लें। यह वायुयान उतरने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व की घोषणा थी। एकाएक वायुयान की तेजी से नीचे की ओर उतरा, यात्री चीख उठे, उन्होंने पट्टी बांध ली और कुर्सी का हत्था मजबूत से पकड़ लिया। भयभीत और आवाक उपेंद्र ने सोचा, यदि मुझे मरना है तो ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद यहां है। वायुयान का नीचे उतरना अचानक रुक गया, किंतु प्रचंड वायु के झोंकों में फंसकर वायवान छटके खाने और लहराने लगा। वायान के ऊपर के कोष्ठ खुल गए और सामान बाहर गिरकर यात्रियों से टकराते हुए फर्श पर गिरा। श्रील प्रभुपाद उपेंद्र की ओर मुड़े और पूछा, ये इस तरह झूल क्यों रहा है? उपेंद्र ने उत्तर दिया, तूफान आया है। उसने देखा कि प्रभुपाद शांत थे, उनके चेहरे पर कुछ खीज नहीं थी। ठीक किसी छोटी सी घटना के समय जैसी या उसी तरह जब कभी उनका भोजन आने में देर हो जाती ही थी, तूफान और वर्षा में विमान चालक अंततः पहियों को हवाई पट्टी पर भूमि के स्पर्श में ले आया और बिना किसी दुर्घटना के विमान उतर गया। यात्रियों ने राहत की सांस ली। तब लोगों ने वाह वाह और साधुवाद कहा। श्रील प्रभुपाद अप्रभावित लग रहे थे। उन्होंने उपेंद्र से पूछा कि मंदिर पहुंचने में कितना समय लगेगा? श्रील प्रभुपाद और उनका दल एम्प्लॉयनेट बुलवार्ड की बड़ी हवेली पर पहुंचे तो उस समय भारी वर्षा हो रही थी। ऑरलीन्स मंदिर के अध्यक्ष नित्यानंद को प्रभुपाद के आगमन की सूचना 2 सप्ताह पहले मिल गई थी। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक यहां और मिसिसिपी फार्म दोनों स्थानों के सभी भवनों की रंगाई पुनाई करा डाली थी, किंतु पूरा बाजार छान डालने के बावजूद वे करेला पाने में असमर्थ रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था कि पाचन ठीक रखने के लिए श्रील प्रभुपाद उसे प्रतिदिन खाते थे। इसलिए उन्होंने प्रभुपाद के एक सचिव के माध्यम से उसे डलस में मंगाने की व्यवस्था की थी। नित्यानंद और आर्लेंस के अन्य भक्तों को लगा कि प्रभुपाद के स्वागत की जितनी तैयारियां संभव थी वे सभी कर चुके थे। घर के प्रवेश द्वार तक संगमरमर की चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई थी, जिसे प्रभुपाद ने अपनी छड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे चढ़कर पार किया। तीसरी मंजिल पर खड़े भक्तगण उस समय प्रभुपाद पर फूल की पंखुड़ियां बरसा रहे थे। कार से मकान तक का पूरा लगभग 250 फुट था, जो 3 फुट चौड़े सफेद कपड़े से ढका था और व्यास आसन तक सीधे पहुंचता था। प्रभुपाद ने गौर निताई राधा कांत और भगवान जगन्नाथ के आचा विग्रहों को नमन किया और फिर वे बैठ गए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि प्रवचन के लिए अब बहुत देर हो चुका है, इसलिए वे तुरंत अपने कमरे में चले गए जो साथ वाली इमारत में ही था। श्रील प्रभुपाद जो ही अपने कमरे में पहुंचे, उनका परिचय सिटी हॉल के एक अधिकारी से कराया गया जो मेयर के कार्यालय से न्यू ऑरलीन्स में उनका स्वागत करने आया था। प्रभुपाद ने शालीनतापूर्वक नगर की प्रतीकात्मक चाबी और एक प्रशस्ति पत्र स्वीकार किया, जिसमें एक सम्मानित आगंतुक के रूप में उनका स्वागत और गुणगान किया गया था। अवसर का लाभ उठाकर वे उसी अधिकारी को उपदेश देने लगे। उन्होंने उसे नगर का एक अधिकारी न समझकर बद्ध आत्माओं में से एक आत्मा समझकर किया। प्रभुपाद जी किसी को ये नहीं समझे कि ऑफिसर आया, उन्होंने उसको बद्ध आत्मा ही समझा। जब स्वागत की हलचल समाप्त हो गई और प्रभुपाद ने स्नान कर लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया तथा विश्राम कर लिया, तब उन्होंने नित्यानंद को बुलाया। जब नित्यानंद उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ, उस समय प्रभुपाद के माथे पर चंदन का लेप लगा था और वे ताजे फूलों की माला पहने थे। नित्यानंद ने प्रणाम किया। अपने गुरु महाराज के साथ कमरे में अपने आप को अकेला पाकर नित्यानंद कुछ संकोच में पड़ गया और भयभीत हुआ। प्रभुपाद अपने मेज पर से फोटो का एक एल्बम उठाया जिसमें मिसिसिपी कृषि फार्म के चित्र थे। वे बोले, आप जानते हैं कि मैं यहां मुख्य रूप से आपका फार्म देखने आया हूं। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही श्री प्रभुपाद जी कृषि फार्म में के लिए वर्षा में 2 घंटे की यात्रा पर चले पड़े। उन्हें उसी रात न्यू ऑर्लीन्स लौटना था क्योंकि अगले दिन सवेरे ही उन्हें डिट्रॉइट के लिए उड़ान पकड़नी थी। कैरी मिसिसिपी में वर्षा बंद हो गई थी और श्री प्रभुपाद ने चारों ओर मंद मंद लहराती भूमि को देखा। इस्कॉन फार्म जो जमीन को साफ करके बनाया गया था और चारों ओर देवदारू वन से घिरा था, एक पहाड़ी पर स्थित था। इसकी पहले से मालिक ने इसका उपयोग घोड़ों के फार्म के रूप में किया था और वर्तमान 14 कमरों का ईंट का मकान, विशाल बखार और अनेक छप्पर सभी अच्छी हालत में थे। प्रभुपाद को जमीन पसंद आई और उन्होंने कहा कि यह ठीक बंगाल की तरह दिखाई दे रहा है। न्यू ऑर्लीन्स के अधिकांश भक्त प्रभुपाद के सानिध्य में होने के लिए भागकर फार्म पर पहुंचे थे और उनकी प्रातःकालीन भगवान भागवत कक्षा के लिए मंदिर के कक्ष में एकत्र होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु उन्होंने जो ही बोलना आरंभ किया बहुत सारी मक्खियां भिनभिनाती हुई और आई और उनके सिर और शरीर पर बैठ गई। एक भक्त उन्हें चावल डुलाने लगा किंतु उससे कुछ नहीं हुआ। प्रभुपाद ने कहा, और पास आ जाओ, यह चावर विशेष रूप से मक्खियों भगाने के लिए ही है, यह शरीर को छुए भी तो कोई हानि नहीं है। व्याख्यान के अंत में श्री प्रभुपाद फार्म के संबंध में बोलने लगे, यह स्थान जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा स्थान है, यद्यपि मैंने इसे पूरा नहीं देखा है। गृहस्थ यहाँ आए और छोटा कुटीर बनाए रहें, अपने लिए खाद्यान्न और सब्जी भाजी उत्पन्न करें, गाय रखकर उसका दूध लें, अच्छा भोजन प्राप्त करें और समय बचाएं। नगर जाने के लिए आप कार से सैकड़ों मील की यात्रा क्यों करते हैं और फिर सैकड़ों मील वापस आने जाने का अनावश्यक कष्ट क्यों उठाते हैं। इस स्थान पर स्थायी रूप से रहें, अपना खाद्यान्न उत्पन्न करें, अपने लिए कपड़े बनाएं और शांतिपूर्वक रहें, समय बचाएं और हरे कृष्ण कीर्तन करें, यही वास्तविक जीवन है। यह मूर्तापूर्ण जीवन क्या है? बड़े बड़े नगर और व्यवस्था में डूबे लोग किसी मित्र से मिलना हो तो 30 मील जाओ, यदि किसी को डॉक्टर से मिलना है तो उसे 50 मील जाना पड़ता था, अगर किसी काम पर जाना है तो उसे 100 मील जाना पड़ता था। तो यह कैसा जीवन है? यह जीवन नहीं, संतोष के साथ रहो। किसी भक्त का जीवन प्रयोजन होना चाहिए, हमें भौतिक वस्तुएं चाहिए किंतु इतनी ही जितनी जरूरत है, हमें कृत्रिम जीवन नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद केवल यंत्र के जीवन की निंदा करते रहे थे। उन्होंने भक्तों से कहा कि वे अपने व्यवहार से उदाहरण दे करके दिखाएं कि सादा जीवन कैसे जिताया जाता है और किस भावनामित्त में उन्नति कैसे की जाती है। यदि वे ऐसा कोई आदर्श प्रस्तुत कर सकें तो अन्य लोग उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करेंगे। यद्यपि नित्यानंद तथा अन्य भक्तों कई महीनों से फार्म पर रह रहे थे किंतु प्रभुपाद के शब्दों से उन्हें वास्तविक दिशा और परियोजना के उद्देश्य का ज्ञान मिला। ऐसा लग रहा था मानो अब वे परियोजना में जीवन फूंक रहे हों। श्री प्रभुपाद अपने कमरे में गए और ब्रह्मानंद स्वामी, सत्यस्वरूप दास गोस्वामी, हरिकेश, जगदीश और उपेन्द्र के साथ बैठे जब वर्णाश्रम के विषय में बोलने लगे तब उन्होंने नित्यानंद को बुलाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, काम आदमियों और पशुओं को करना चाहिए। नित्यानंद ने पूछा कि गृहस्थों को खाद्यान्न सहकारिता के आधार पर उत्पन्न करने चाहिए या एक परिवार के आधार पर? प्रभुपाद ने कहा उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो सामुदायिक केंद्र में रहने से क्या लाभ। जब उपेंद्र ने पूछा कि दूध का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए तो श्री प्रभुपाद ने एक विधि बताई जिसे उन्हें भारतीय विधि कहा। उन्होंने बताया कि जिस तरह नंद महाराज गायें रखते थे उसी तरह भारत में अनेक गांव हैं, वे एक बड़ा कड़ाहा रखते हैं और जो दूध इकट्ठा होता है उसे उसी कड़ाहा में रख देते हैं, उसे आग पर चढ़ाकर गर्माया जाता है, पूरा परिवार जब जी चाहे उसमें से दूध पी सकता है। रात में जो दूध बच जाता था उसे दही बना देते थे। अगले दिन वे चाहे दूध पिए चाहे दही खाएं, तब बचे हुए दूध का भी दही बना दिया जाता था और सबको सुरक्षित कर दिया जाता था। जब पर्याप्त दही इकट्ठा हो जाती थी तब उसे मथते और मक्खन निकाल लेते। वे उस मक्खन को ले लेते और मक्खन से निकाला पानी मट्ठा कहलाता है। चपातियां और खाने में वे दाल की बजाय यह मट्ठा इस्तेमाल करते थे। ये बहुत स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट होता है। इस बीच मक्खन से घी बना लिया जाता था। इस तरह एक बूंद दूध भी व्यर्थ नहीं होता था। श्रील प्रभुपाद ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकतानुसार दूध पिए और घी नगरों में इस्कान के आहार गृहों में इस्तेमाल हो सकता है। दही का भी इस्तेमाल आहार गृहों में संदेश, रसगुल्ला, अन्य व्यंजन बनाने में किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद ने बल दिया कि फार्म को भली भांति संगठित करना चाहिए और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्गों के लोगों को काम में लगाना चाहिए, न कोई आलस्य और न कोई बेरोजगारी। उन्होंने कहा, नहीं तो लोग आलोचना करेंगे कि हम केवल खा रहे हैं, सो रहे हैं और श्रम से बच रहे हैं। नित्यानंद ने पूछा कि क्या फार्म पर मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दिया जाए। प्रभुपाद ने समझाया, हम मशीन के विरुद्ध नहीं हैं। आप मशीन का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मशीन से काम लें और लोग बेकार बैठे रहें। वास्तविकता यह है कि आप मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु पहली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए। यदि आपके पास बहुत लोग हैं तो आप मशीन को क्यों इस्तेमाल करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने यह भी बताया कि वैदिक संस्कृति में क्षत्रिय कर इकट्ठा करते थे और नागरिकों की रक्षा करते थे, जबकि शूद्र खेतों में, व्यवसायों में कार्य करते थे। स्त्रियां भोजन बनाती थी, सूत काटती थी, कपड़ा बुनती थी और दूध उत्पादन का काम देखती थी। निम्न वर्ग के लोग जैसे चर्मकार, जो मरी हुई गायों का चमड़ा इस्तेमाल करते थे, मांस खा सकते थे, किंतु ऐसा नहीं था कि कोई प्रचार्य हो। फिर भी मांस भक्षण कर रहे हो, यह आज के पतित समाज का काम है। शिक्षक का अर्थ है ब्राह्मण, फिर भी वह मांस खा रहा है, कितना भयावह है। इसलिए आप मेरे बताए अनुसार कार्य करें और ऐसा ही संगठन बनाएं। मैं आपको विचार दे सकता हूं, किंतु मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा। यदि आप मेरे विचारों पर चल सकते हैं तो आप पूरा संसार बदल सकते हैं। विशेषकर यदि आप अमेरिका को बदल सकते हैं तो सारा संसार बदला जाएगा। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद भावुक हो उठे और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह हमारा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु ने पर उपकार की व्याख्या की है कि यदि सबको नहीं तो जितने संभव हो उतने लोगों को बचा लो। यही मानव जीवन है, यही कृष्ण भावना मित्र है कि उनकी रक्षा कर लो जो अंधकार में है। उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचो कि कृष्ण भावना मित्र में मेरा व्यवसाय है, इससे मुझे रोटी, कपड़ा और मकान मिल रहा है। भारतवासी ठीक यही कर रहे हैं, इस तरह नहीं। पर उपकार की कृष्ण भावना मित्र है। पर उपकार से कृष्ण प्रसन्न होंगे, वे स्वयं लोगों की भलाई के लिए आते हैं। और यदि आप लोगों की भलाई करेंगे तो कृष्ण कितने प्रसन्न होंगे। ठीक जैसे मैं सभी केंद्रों की यात्रा कर रहा हूं और यदि मैं पाता हूं कि मेरे अनुयायी, मेरे लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है तो मुझे कितनी प्रसन्नता होगी। तब मैं यह परिश्रम बचाकर शेष जीवन पुस्तकें लिखूंगा। इसी तरह यदि कृष्ण देखते हैं कि उनकी ओर से तुम लोग धूर्तों को उबारने का प्रयत्न कर रहे हो तो अपने इस काम से तुम लोगों को कितना प्रसन्न करोगे। वैष्णव की विशेषता है पर दुखे दुखी, वह औरों को दुखी में देखकर दुखी होता है, यही वैष्णव का लक्षण है। शील प्रभुपाद उठे और कमरा छोड़कर चल गए। इस प्रकार उन्होंने इस आत्मीय बैठक का समापन किया। जब हरिकेश ने कहा कि श्रील प्रभुपाद का भोजन बनने में वह 2.5 घंटे लगाता है, तो प्रभुपाद बोले, तुम नहीं जानते कि भोजन कैसे तैयार किया जाता है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा और उसे 1 घंटे में तैयार कर दूंगा। हरिकेश ने जैसे विश्वास न करके कहा, 1 घंटे में, ये तो आश्चर्यजनक बात है। तब प्रभुपाद ने अपने कमीज उतार दी और वे मिसिसिपी के उस छोटे से रसोई घर में घुस गए। जब भक्तगण खुले दरवाजे से झांक रहे थे कि प्रभुपाद ने अपने घड़ी पर दृष्टि डाली है और कहा, इस समय 12 बजे हैं। उन्होंने उसी तीन खाने वाले पीतल के कुकर से काम लिया जो वे 1965 ईस्वी में अमेरिका में लाए थे। नीचे के खाने में उन्होंने मूंग की दाल और पानी रखा, बीच के खाने में चावल और ऊपर के खाने में तरह तरह की कड़ी तरकारियां जैसे कुमड़ा, मटर, आलू और गोभी। कुकर को धीमी धीमी आंच पर रखकर उन्होंने एक कड़ाही में 1 इंच के बराबर घी डाला और उसी आंच पर चढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने एक बैगन के टुकड़े किए और उनमें हल्दी और नमक लगाया और फिर गर्म घी में उन्हें तल दिया। आटे में पानी मिलाने के बाद उन्होंने गूंद कर उसकी लोई बना ली और फिर वे चपातियां बेलने लगे। बीच बीच में वे अपनी घड़ी देखते जाते थे और जब 45 मिनट बीते गए तब उन्होंने कुकर का ढक्कन हटा दिया और उन्हें उल्टा करके उसका छोटा तवा बना दिया। उस पर उन्होंने घी डाला और कुछ करेला पकाया, तब होशियारी से उसमें जीरा, सौंफ, लाल मिर्च और हींग मिलाई, भाप में पकाई। सब्जियां पर उन्होंने नींबू निचोड़ दिया और कुछ मिनटों में सब समाप्त कर दिया। श्रील प्रभुपाद ने अपनी रिस्ट वॉच को देखा और कहा, एक घंटा हमने 9 चीजें बनाई है। तब वे रसोई से बाहर आ गए और उनका सेवक परेशान हो गए। प्रभुपाद ने कहा, हर एक को जिसने उन्हें भोजन बनाने देखा है कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। तीसरे पहर 5 बजे प्रभुपाद फार्म देखने गए। खलिहान में उन्होंने देखा कि बछड़े दूध पी रहे हैं। उन्होंने पूछा, बैलों का आप क्या करते हो? हिचकिचाए हुए विद्यार्थी की तरह नित्यानंद ने उत्तर दिया, जुताई करते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, उनका इस्तेमाल जुताई और सामान ढोने में होना चाहिए। जुताई में आपको अधिक आदमी लगाने हैं। एक हल में 2 बैल इस्तेमाल होते हैं। एक घास के मैदान में निकलते हुए प्रभुपाद ने पूछा कि कटी हुई घास अभी तक खेत में क्यों पड़ी है? नित्यानंद ने बताया, वह इस इंतजार में था कि वर्षा के बाद घास सूख जाए। प्रभुपाद ने आगाह किया कि वर्षा कटे घास को बर्बाद कर देगी, उसे शीघ्र हटा देना चाहिए। 3 एकड़ गन्ने के खेत में पहुंचकर वे 5 सीधे चलते गए, फिर बीच खेत में घुस गए। गन्ना उनके सिर के ऊपर कई फुट ऊपर था। खेत की दूसरी ओर निकलकर वे देवदार वन में के किनारे पहुंच गए। प्रभुपाद ने कहा, ये वन प्रकृति की देन है, आप वृक्ष काटकर अपना घर बनाएं। शेष बच्चे वृक्षों को काटकर जलाने के काम में लाएं। तब साफ हुई जमीन को आप जोतकर खाद्यान्न उत्पन्न कर सकते हैं, यह स्वाभाविक है। प्रभुपाद ने आधुनिक समाज की इस बर्बादी पर दुख प्रकट किया कि वह पेड़ काटकर व्यर्थ के ढेरों समाचार पत्र छापता है। उन्होंने 2 एकड़ का प्लाट देखा जिस पर भक्तों ने आड़ू, नारंगी, नाशपत्ती, अंजीर आदि फलों के पेड़ लगाए थे। 25 विशाल पेकन वृक्ष की उन्होंने देखा, किंतु उन्हें असंगतियां मिली। प्रभुपाद के निरीक्षण के लिए नित्यानंद ने 2 टेस्टर चारा काटने की एक बड़ी मशीन, घास काटने की मशीनें, 5 एक ढोकनी और एक चौपाहिया गाड़ी सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया था। लेकिन जब प्रभुपाद ने मशीनों को खुले हुए खड़ा पाया तो उन्होंने कहा कि इन्हें आड़ में क्यों नहीं रखा। नित्यानंद ने उत्तर दिया कि उनके लिए आड़ शेड अभी बना नहीं है। प्रभुपाद बोले इस बीच वे नष्ट हो जाएंगे जब तक आपका शेड बनेगा, तब तक उनमें जड़ जंग लग जाएगा और बेकार हो जाएंगे। उन्होंने एक हिंदी कहावत सुनाई और उनका अनुवाद किया। एक स्त्री एक मेले में जाने के लिए सज रही थी, किंतु जब तक वह सजकर तैयार हुई तब तक मेला समाप्त हो गया। क्या प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल है। भक्त हंसने लगे किंतु नित्यानंद गंभीर हो गया। प्रभुपाद आगे कहते गए, इन मशीनों को काम में लाओ, नहीं तो जब तक वे काम के लायक हैं इन्हें बेच दो, किंतु इन्हें इस उपेक्षित ढंग से बेकार मत रखो। नित्यानंद ने 25 एकड़ में पैदा हो रहा सोरगम ज्वार बाजरा चरी आदि प्रभुपाद को दिखाया। यह अन्य पशुओं के लिए था और कटने पर इसे खत्ती में रख दिया जाता था। प्रभुपाद ने पूछा, तो क्या हर चीज जानवरों के लिए ही है, मनुष्य के लिए कुछ नहीं है? नित्यानंद ने कहा, गायें हमारे लिए दूध देती हैं। प्रभुपाद बोले, ये ठीक है, किंतु आप कोई खाद्यान्न नहीं पैदा कर रहे हैं, क्यों? प्रभुपाद के आदेश अस्पष्ट थे। घूमना समाप्त करके ठीक पहले उन्होंने नित्यानंद से फिर पूछा, ये बैल क्या कर रहे हैं? पाठ याद किए हुए किसी विद्यार्थी की तरह नित्यानंद ने उत्तर दिया, ये हल जोतते हैं। प्रभुपाद ने कहा, हाँ इसी की जरूरत है, इनसे हल जोतने और बोझा ढोने का काम लिया जाना चाहिए, और जब तक हमारे लोग कृष्ण भावना मित्र में प्रशिक्षित नहीं है तब तक वे सोचेंगे कि गायों की देखभाल करके करने की क्या जरूरत है, अच्छा होगा शहर चलें, पैसा कमाएं और इन्हें खो जाएं। ये आदेश उन आदेशों की तरह था जो प्रभुपाद विभिन्न मंदिरों में राधा कृष्ण विग्रहों की स्थापना के बाद देते रहते थे। यदि भक्तों में उत्साह नहीं बना रहा तो उन्होंने चेतावनी दी कि विग्रह अर्चा केवल कर्मकांड में बदल रह जाएंगे और अंत में भक्तों को गुरु महाराज की ओर से ये भार उन पर डाला जाना भी बुरा लगने लगेगा। इसी तरह फार्म का भी यही हाल है। यदि बैलों का उपयोग स्वाभाविक ढंग से नहीं किया जाता है और दूध का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया जाता है तो अंत में वे जानवरों से छुटकारा पा लेना चाहेंगे, लेकिन प्रभुपाद के बताए ढंग से चलने पर भक्त गाय और बैल सहयोग पूर्वक अच्छी तरह रहेंगे और कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। यद्यपि श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना मित्र आंदोलन के अन्य क्षेत्रों में सालों से अब तक न जाने कितने व्यवहारिक उपदेश दिए थे, किंतु यह पहला अवसर था जब उन्होंने वर्णाश्रम समाज के संचालन पर इतने सारे व्यवहारिक सुझाव दिए। ऐसे होनहार कृष्ण चेतना फार्म समुदाय को देखकर उन्हें संतोष हुआ और वे बहुत प्रसन्न थे। घर में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, वे न्यू ऑर्लियंस लौटने को तैयार थे। कृष्ण की सेवा में यह दिन बहुत व्यस्त उत्पादक रहा और कल भी ऐसा ही रहेगा। समय हो गया तो बहुत अच्छा, बहुत रोचक आज का प्रभुपाद जी का सन्यासियों के साथ भक्तों के साथ रहा। और प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि भक्ति पूर्वक माया से दूर रह करके इंसान भक्ति करे। माया देवी और भक्ति देवी दोनों देवी हैं, लेकिन एक देवी जो है भक्तों के विरुद्ध कार्य करती है, एक देवी भक्तों के अनुकूल काम करती है। तो हमें माया देवी से बचने के लिए हाथ जोड़ना चाहिए, माया देवी मुझे फुर्सत दीजिए, मैं भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकूं। माया से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि माया से चैलेंज करोगे तो माया तुमको आगे नहीं जाने देगी। तो माया से हाथ जोड़ के विनती करना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करने दीजिए। और जब भक्ति देवी हमेशा चाहती है कि जीव को भगवान की भक्ति में लगाएं, लेकिन जो जन्म जन्म से जब इतनी रफ्तार में भाग चुका है, माया का साथ दे चुका है, तो माया के इसमें आवेश में आकर के माया के साथ चला जाता है, क्योंकि उसका जन्म जानदार से उनका साथ रह चुका है और उस साथ को निभाने की बार बार चेष्टा करता है। जब हम मंदिर में रहते हैं तो माया से थोड़ा सा मुक्त रहते हैं, जब मंदिर से बाहर जाते हैं तो हमें दुनिया मालूम पड़ती कैसी है, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे इनके पास धन है होना चाहिए, जैसे इनके पास स्त्री है ऐसा होना चाहिए, जो स्त्री कपड़ा पहन के चले ऐसी मेरी स्त्री पहनना चाहिए, इसे माया कहते हैं। अब माया से जब दूर हो जाएंगे भक्ति आपको पकड़ लेगी, या भक्ति से छूट जाएंगे तो माया पकड़ लेगी, तो आपको किसको पकड़ाना है आपके ऊपर है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग माया के चंगुल से हमेशा बचते रहिए। प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे अपने लेक्चर में, माया इज वेरी पावरफुल, और ये नहीं कहते थे कि भक्ति इज वेरी पावरफुल, क्योंकि माया हमेशा आपके निकट खड़ी रहती है, एनी टाइम छपट के पकड़ लेती है। और भक्ति देवी तो शरीफ हैं, भक्ति देवी इतना तेज नहीं छपट सकती हैं, जब आप भक्ति करना चाहेंगे तो आपकी मदद करती हैं, लेकिन माया जो है आपको भक्ति करने नहीं देती है, इसलिए माया से हमेशा आप बचते रहिए। प्रभुपाद जी का ये संदेश है। आप लोगों का समय लिया लेकिन बहुत अच्छा लगा प्रभुपाद जी का, और पढ़ने में अच्छा लगा और आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगा। किसी ने नींद नहीं लिया लिया, क्षमा कीजिएगा समय लिया आप। अरे कृष्ण।